पृष्ठ संख्या 276, अध्याय 28, संगीत अध्यापन का व्यवसाय। शेक्सपियर ने कहा है कि संसार एक रंगभूमि है और उस पर हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका अदा करता है। शेक्सपियर का यह तत्व ज्ञानात्मक विधान अत्यंत सार्थक एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जीवन में अलग-अलग भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए, परिवार के बुजुर्ग को कुटुंब प्रमुख की हैसियत से अपनी भूमिका अदा करने के साथ ही साथ पति, पिता, पुत्र आदि अलग-अलग रिश्तों के अनुसार भिन्न-भिन्न भूमिकाएं भी अदा करनी पड़ती हैं। यही नहीं, तो अलग वह नौकरी कर रहा हो तो संबंधित व्यवसाय में उसे नौकर की भी भूमिका अदा करनी पड़ती है, और इन विविध भूमिकाओं को वह समझदारी एवं कुव्वत के अनुसार निभाता है। भूमिका की संकल्पना नाट्य क्षेत्र में से आई है। जब कोई अभिनेता नाटक की एकाध व्यक्ति रेखा प्रस्तुत करता है, तब वह अपने स्वत्व को भुलाकर तथा उस पात्र की व्यक्ति रेखा से एक रूप होकर अपनी भूमिका अदा करता है। किसी कुशल नट को जब एकाध खलनायक की व्यक्ति रेखा प्रस्तुत करनी होती है, तो वह इस ढंग से उसे पेश करता है कि दर्शकों के मन में उसके प्रति चिढ़, द्वेष, क्रोध उत्पन्न हो। मूलतः एक सज्जन व्यक्ति होने पर भी खलनायक की भूमिका के अनुरूप उसके द्वारा व्यक्त किए गए भावों को देखकर दर्शक तहे दिल से उसकी प्रशंसा करके उसे खलनायक की भूमिका के लिए लायक होने का प्रमाण पत्र दे देते हैं। भूमिका के योग्य आचरण कैसा हो, यह बात भूमिका अदा करने वाला व्यक्ति ही यद्यपि तय करता है, तो भी प्रायः उक्त भूमिका से संबंधित विविध व्यक्ति एवं सामाजिक घटकों की अपेक्षाओं में से ही उक्त आचरण निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, संगीत के एक अध्यापक की भूमिका के बारे में हम संक्षेप में विचार करेंगे। संगीत शिक्षक के रूप में उसकी भूमिका क्या हो, यानी उसका बर्ताव कैसा हो, इस बारे में उससे संबंधित विविध व्यक्तियों की भिन्न भिन्न अपेक्षाएं होती हैं। मान लीजिए कि यह संगीत शिक्षक किसी विद्यापीठ के संगीत महाविद्यालय में कार्य कर रहा हो, तो एक शिक्षक की हैसियत से उसके संबंध की अपेक्षाएं निम्नांकित आकृति में हम देख सकते हैं। संगीत शिक्षक गुरु की भूमिका, शिक्षक की शिष्य की अपेक्षाएं, पत्नी एवं कुटुंब की अपेक्षाएं, सहयोगी शिक्षकों की अपेक्षाएं, प्राचार्य की अपेक्षाएं, पालकों की अपेक्षाएं, शिष्य की अपेक्षाएं, शिष्य की अपेक्षाएं, विद्यापीठीय शिक्षा समिति की अपेक्षाएं, संगीत के रसिक वर्ग की अपेक्षाएं। ऊपर की आकृति से यह बात ध्यान में आ जाएगी कि संगीत शिक्षक से संबंधित अलग-अलग घटकों की कोई न कोई अपेक्षाएं होती हैं। पृष्ठ संख्या 277। इन अपेक्षाओं को जितनी अधिक मात्रा में शिक्षक संतोषजनक रूप में पूरी कर लेता है, उतनी ही मात्रा में वह प्रभावी सिद्ध होता है एवं लोकप्रिय बनता है। इन सब घटकों की अपेक्षाओं का विवेचन करना जरूरी नहीं है, किंतु महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि संबंधित विविध व्यक्ति, अधिकारी, समाज या उसके विविध समूह इन सब की अपेक्षाओं के अनुसार हर भूमिका की रूपरेखा स्पष्ट होती है। पृष्ठ संख्या 278। संगीत अध्यापन का व्यवसाय। संगीत का अध्यापन गुरु के लिए एक अर्थोत्पादक व्यवसाय है। व्यवसाय यानी क्या और संगीत शिक्षक का व्यवसाय कैसे किया जाए, इस बारे में कुछ विवेचन आगे किया गया है। पहला, कोई भी व्यवसाय हो, वह समाज के हित के लिए या विकास के लिए होना चाहिए। संगीत शिक्षा का व्यवसाय भी इसका अपवाद नहीं है। दूसरा, यह व्यवसाय समाज हित के लिए है। इस बात को दृष्टि सम्मुख रखकर तदनुरूप संगीत का अध्यापन करने की प्रामाणिक निष्ठा गुरु में होनी चाहिए। तीसरा, संगीत अध्यापन का व्यवसाय समाज हितार्थ होने से उसके प्रति व्यवसायिक को अभिमान होना चाहिए। चौथा, प्रत्येक व्यवसायिक को आदर्श के तौर पर अपना व्यवसाय पूर्णकालिक रूप में करना चाहिए। पांचवा, हर एक व्यवसायिक को अपना व्यवसाय निरोग और खुश सुखी जीवन के लिए करना होता है। अपने व्यवसाय से उच्च रहन सहन प्राप्त हो, यही प्रत्येक व्यवसायिक का उद्दिष्ट होना चाहिए। किंतु आर्थिक समृद्धि के साथ ही बौद्धिक, शारीरिक और सांस्कृतिक विकास भी उसे साध्य कर लेना चाहिए। छठवां, व्यवसाय व्यवसाय ही रहे, वह धंधा न बन जाए। इस संबंध में उसे सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए उसे निम्नांकित विचारों का मनन एवं तदनुरूप आचरण करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर हम संगीत शिक्षक के व्यवसाय को ही लें। अ, विद्यार्थी संगीत शिक्षक का ग्राहक होता है। गुरु को विद्यार्थी की कुव्वत के अनुसार खुले दिल से और सुसूत्र रूप में विद्यादान करना चाहिए। ब, संगीत एक प्रायोगिक कला होने से विद्यार्थी में कौशल निर्माण करना उसका उद्दिष्ट होना चाहिए। क, प्रभावी विद्यादान के फलस्वरूप होने वाली प्रगति से विद्यार्थी संतुष्ट और प्रसन्न हो, इस बारे में गुरु को निरंतर जागरूक रहना चाहिए। ड, अपने दैनंदिन अध्यापन कार्य से गुरु को भी संतोष एवं आनंद प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए उसका जीवन विषयक दृष्टिकोण विशाल होना चाहिए। गुरु को लगना चाहिए कि विद्यादान ईश्वर भक्ति है। वर्क इज वर्कशिप। सातवां, संगीत कला असीम है। उस कला का शास्त्र, इतिहास, कला की विविध शैलियों के अंग, कला का प्रस्तुतीकरण, प्रस्तुतीकरण के विविध रूप, उनमें होने वाले परिवर्तन आदि के विषय में गुरु को अपना ज्ञान अद्यावत रखना चाहिए। पृष्ठ संख्या 279। इसके लिए अखंड ज्ञान प्राप्ति करते हुए उसे अपना निज का विकास करते रहना चाहिए। उम्र के हिसाब से कला प्रस्तुतीकरण के उसके कौशल में संभवतः वृद्धि नहीं होगी। कदाचित वह कम भी हो सकेगा, किंतु उसका अनुभव, सिद्ध ज्ञान, उसकी चिंतन शक्ति, दृष्टि की विशालता आदि सब विकसित होता रहना चाहिए। इसके लिए गुरु को निरंतर अध्ययन, चिंतन, उपर्युक्त चर्चा आदि करते रहना चाहिए। अगर उसका इस प्रकार का अध्ययन चालू न हो तो एक दुष्ट चक्र के निर्माण होने की बड़ी संभावना है। वह दुष्ट चक्र इस प्रकार है। पहला, जो गुरु अपना अध्ययन करना छोड़ देता है उसकी विचार प्रक्रिया रुक जाती है। दूसरा, जिसकी विचार प्रक्रिया रुक जाती है उसका विकास रुक जाता है। तीसरा, जिसका विकास रुक जाता है उसकी मति पर जंग चढ़ जाता है और उसका पिछड़पन शुरू हो जाता है। चौथा, जिसका पिछड़पन शुरू हो जाता है वह स्वयं प्रोत्साहित नहीं होता और अपने शिष्यों को भी प्रोत्साहित नहीं कर सकता। पांचवा, जो अपने निज के काम के विषय में प्रोत्साहित नहीं रहता वह आगे चलकर अपने स्वयं के काम से ही प्रेम नहीं करने लगता। छठवां, जो अपने काम से प्रेम नहीं करने लगता वह वैफल्यग्रस्त होता है और ऐसा वैफल्यग्रस्त गुरु अपने विद्यार्थी का आदर्श के रूप में हित देख नहीं सकता। इस शोकांतिका को टालने के लिए और आत्मानंद के लिए गुरु को अपनी विद्या ग्रहण की प्रवृत्ति सदैव चालू रखनी चाहिए। अब हम संगीत अध्यापक की स्वीकारी गई भूमिका के विषय में आगे विचार करेंगे। संगीत क्षेत्र के गुरुजन जब संगीत अध्यापन का व्यवसाय करना तय करते हैं, उस समय वह अपने स्थैर्य के लिए उठाया गया कदम होता है और वह वैसा ही होना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट आदि सब व्यवसायिक वैसा ही करते हैं, किंतु व्यवसायिकों पर कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। उससे कुछ अपेक्षाएं व्यक्त की जाती हैं। ऐसा ही उत्तरदायित्व एवं अपेक्षाएं संगीत शिक्षक के बारे में भी हुआ करती हैं। उदाहरणार्थ, तबले के अध्यापक की जिम्मेदारियां एवं उससे संबंधित अपेक्षाएं निम्नानुसार हो सकती हैं। पहला, विद्यार्थी के दोषों एवं त्रुटियों का अध्ययन करके उन्हें दूर करने के लिए विशेष उपाय योजना, पृष्ठ संख्या 280। दूसरा, विद्यार्थी के प्राप्य लक्ष्य की निश्चिति करना और उसके वादन कौशल की प्रगति का नियमित जायजा लेना। तीसरा, विद्यादान के दौरान विद्या ग्रहण ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, इसका समय समय पर अंदाजा लेना। चौथा, नियमित पूर्णकालिक पढ़ाई। पांचवा, शास्त्र के साथ ही साथ वादन कौशल पर बल। छठवा, लय के पक्केपन को बढ़ाना। सातवा, हाथ के शास्त्र शुद्ध रखाव की शिक्षा। आठवा, योग्य अक्षर निकास तंत्र की शिक्षा। नौवां, वादन में स्वरमयता एवं कलात्मकता लाना। दसवां, हाथ में वजन पैदा करना। ग्यारहवां, शब्दाक्षरों की स्पष्टता एवं तैयारी करा लेना। बारहवां, स्वराभ्यास एवं वाद्य को सुरीलेपन के साथ मिलाने की विशेष शिक्षा। तेरहवां, सात संगत के तंत्र एवं मंत्र का विशेष अध्यापन, जिससे सात संगत की वादन कौशल में प्रभावात्मकता पैदा हो जाए। चौदहवां, विद्यार्थी के मंच प्रदर्शन के छोटे छोटे खानगी कार्यक्रमों का आयोजन। पंद्रहवां, उक्त मंच प्रदर्शन में विद्यार्थी द्वारा किए गए कला प्रदर्शन की प्रभावात्मकता का सूक्ष्म निरीक्षण करके विद्यार्थी और उसके पालक के साथ प्रस्तुतिकरण में पाए गए गुण दोषों की साफ साफ चर्चा करके उन्हें दूर करने के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन करना। तबले के गुरु के जिम्मेदारियां और उसके विषय में अपेक्षाओं के संबंध में उदाहरण के तौर पर हमने ऊपर चर्चा की है। ऐसी ही अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां गायन वादन एवं नृत्य कला के गुरु के बारे में भी हम निर्धारित कर सकते हैं। मेरे देखने में तबले के कुछ ऐसे गुरु आए हैं जो उपर्युक्त व्यक्त की गई भूमिका की अपेक्षा अपने शिष्यों के लिए और भी बहुत कुछ किया करते हैं, किंतु साथ ही तबले के ऐसे भी अनेक गुरु मुझे गांव-गांव में मिल गए जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों एवं अपेक्षाओं के बारे में विशेष एहसास हुआ नहीं दिखाई दिया। अगर इस प्रकार का एहसास हो जाए तो उनके विचारों एवं आचार में निश्चय ही फर्क पड़ेगा, फलतः विद्यार्थियों की प्रगति एवं विकास की गति बढ़ जाएगी।